نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير تیرا نقش پا تھا جو رہنما غبار راہ تھی کہکشاں. مشکل اردو ہے لیکن مفہوم بہت پیارا ہے کہ جب تک امت مسلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتی رہی تو پوری دنیا تو چھوڑ دیجئے آسمانوں پہ بھی مسلمانوں کی دھاک تھی. مسلمان اس دنیا میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح تھے. پھر ہمیں کیا ہو گیا, ہم کدھر کھو گئے, ہم نے کیا غلطی کی, اور اب اپنی ان غلطیوں کی تلافی کے لیے ہم کیا کریں. یہ ہے آج کے لیکچر میں. حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ ہر دور میں جو آزمائی گئی اس کے بعد آزمائشوں سے نکلنے کا جو نسخہ تھا وہ اسوہ حسنہ کی روشنی میں جینا اور مرنا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کرے. قرآن پاک ہمیں اس بارے میں جو گائیڈ لائن دیتا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک کی آیت سورۃ الاحزاب آیت 21, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. سورۃ الاحزاب پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور معاشرتی زندگی سے بھری ہوئی ہے. آپ کو گھریلو سطح پہ ان سائڈ دا ہوم اور آؤٹ سائڈ دا ہوم یعنی مدینہ کی گلیوں میں منافقین نے ہر ممکن طریقے سے مشکلات میں ڈالنا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ان کی پھوپھوزاد بہن سے کیا ہوئی, زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کی متعلقہ سے نکاح ہونا ایسے تھا جیسے لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا. اور حقیقت ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو دین کا کام کرنے والوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کوئی غلطی وہ کریں ہم ان کو پکڑیں. یاد رکھیے کچھ لوگ تو خاندانی طور پہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں نا, وہ بھی بہت بری بات ہے, لیکن سب سے بری برائی کیا ہے, دا ورسٹ تھنگ, کیا آپ دین داروں کی برائیاں ٹالیں, ان کی برائیوں کو اچھالیں, ان کی چھان پٹک میں رہیں. ریسرچ ویسے تو کچھ کرنی نہیں, اس پہ کر کے دیکھیں کہ کس کی زندگی میں کیا جھول ہے, کس کے نیکی کے کام میں کیا گڑبڑ ہے, تاکہ ہم اس کو بنیاد بنا کر ان کو بدنام کریں. اور وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے وہ اچھے ہیں. ہاں, دین کا کام کرنے والوں میں یہ جو خرابی ہے یہ بہت بری ہے. اور مسئلہ کیا ہوتا ہے, بدنامی, دین کو بدنام کر دیا جائے. کیسے؟ دیندار کو بدنام کر کے. یاد رکھیے دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آیا. دین ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی نہیں بجھے گا. حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں, لیکن وہ ایسا کر نہیں سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ واللہ متم بنورہ. تو جب اسلام کی روشنی پھیلی تو اسلام تو ایک سورج تھا, پوری کوششوں کے باوجود بھی لوگ اس کی روشنی کو مان نہیں کر سکتے تھے. یہ تو ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ جلانا. پھر آخر انہوں نے سوچا کہ قرآن کو تو بدل نہیں سکتے, قرآن میں تو جھول ہے نہیں, وہ تو سورۃ ملک کی آیت جو آسمان کے بارے میں ہے کہ فرج البصر هل تری من فطور ثم مرج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاصی وهو حسیر, اس میں تو کوئی جھول نہیں, کوئی شگاف نہیں, کوئی رخنا نہیں. تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا چاہا, کیونکہ دین والے کو بدنام کر دو لوگ خود ہی دین سے دور ہوں گے. آج کے دور کا بھی یہی مسئلہ. पहले तो लोग हाथों में पकड़े हुए माइक या मिंबरों पे, मुसल्लों पे, मस्जिदों के माइक्स पे एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। चलिए गली मोहल्ले के चार लोगों तक बात पहुंच जाती होगी। आज सोशल मीडिया है, हर बंदे के पास आज़ादी है कि वो कोई सोशल मीडिया क्रिएट करे और उसमें चाहे अच्छा बोल दे या बुरा बोल दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का काम शुरू किया और वो बाज़ाब्ता तौर पर मदीना में हुआ, मक्का में तो सिर्फ अभी किरदार साजी थी, इतनी मुश्किलात थी, इतनी किरदार कुशी थी, इतनी एडवर्सिटी थी कि कुछ और करना क्या है, बस इस्तकामत इस्तकामत। हत्ता कि नमाज रोज़ा भी नहीं था अपनी फर्जी सूरत में, बस जमे रहो, इन अल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम इस्तकामू। और वहाँ सब अपने थे, जिसको आप कहते अपने गांव के थे, अपने हम वतन थे। लेकिन मदीना आते ही नबी सल्लम के पास पहले से मुशरिकीन जो मदीना में थे, औस और खजरज के नाम पे, इसी तरह मदीना के वो यहूद जिन्होंने कसम खाई हुई थी कि नबी को चैन नहीं लेने देंगे, शायद ही कोई रात या दिन 24 घंटे सुकून के नबी की ज़िंदगी में गुजरे हों कि जिसमें लोगों ने आपको आजमाया ना हो। इसी तरह की कैफियत हजरत जैद की मनकूहा बीवी, जिसको तलाक दी और अल्लाह ने एक रस्म तुड़वानी थी, फिर और भी बहुत से माशर्ती कवानीन थे जो उस माशरे में बेकार किस्म के फैले हुए थे। अगर मैं इसको अपने और आपके आज के दौर पे ले लूँ, 2024 का बिल्कुल आखिरी सांस है, December 12th है आज, आज इस माशरे में जिधर आप और मैं बैठे हैं, और मैं नाम भी ले लेती हूँ कि ये लेक्चर खुश आपसे हो रहा है, जिसका पानी बड़ा मीठा है, जिसके लोग बड़े मीठे हैं, जहाँ मोहब्बतें हर तरफ फैली हुई हैं, जहाँ की मट्टी बड़ी जरखेज़ है माशाल्लाह, बिल्कुल वहीं इस माशरे में मैं दो तीन नाम लूँ सिर्फ, मारूफ बातें जो माशरे में फैली हुई हैं, कुछ रस्में, कोई कुंडे, कोई मेहंदी, कोई उपटन, कोई शादी के फंक्शन में नाचना गाना, किसी के मरने की बरसी, चेहलम और इस तरह की कहानियाँ, और कोई एक बंदा आकर उसके बारे में बात कर दे तो दुनियादारों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, दुनिया वाले अपने हाल में मगन है, लेकिन दीन के नाम पे लोग ऐसे वक्तों में आवाज़ें उठाएंगे। बस नबी सल्लम उनकी नज़र में एक ऐसा जुर्म कर रहे थे जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया, और वो क्या था, हमारे बाप दादा के तौर तरीकों पे तनकीद, क्या वो गलत थे, वो ठीक थे, ये था वो था। ऐसे में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। मक्का में आप रहे 13 साल, वहाँ तो जो था सो था, लेकिन मदीना में आने के बाद तो लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, अल्लाह ने नबी सल्लम की ज़ात को बेहतरीन नमूना करार दिया, और हम सब को क़यामत तक के लिए आपके नक्शे पापे चलने का हुक्म दिया। इसलिए अब हमें किसी की पैरवी की ज़रूरत नहीं, हमारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत काफ़ी है। आप उम्मीद के किरण बनकर आए, आपने लोगों को अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया और जीने का ढंग सिखाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा, लोगों में तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम हरगिज़ भी नहीं भटकोगे जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रखोगे, और एक किताब अल्लाह है, अल्लाह की किताब, और एक उनके रसूल की सुन्नत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो हर लिहाज से मौजू है ज़िंदगी के लिए, आप एक ऐसा नमूना हैं आदमी के लिए कि जिसके बाद हमें किसी और को देखने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हम आपकी तालीमात से दूर हैं, जिसकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा मसाइल का शिकार है। पैलेस्टाइन, कश्मीर, शाम, इराक और दूसरे इस्लामी ममालिक को देखिए, एक आग जल रही है, मुसलमान आपस में बिखरे हुए हैं, इंतशार है। इस सारी चीज़ को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को सामने रखते हुए अपने आप को इस बात का यकीन दिला दीजिए कि इत्तबाए रसूल ही हमारे लिए लाजमी है। अल्लाह ने कुरान पाक में आपकी इत्तबा को लाजिम और मलजूम करार दिया। आज के मसाइल हों या माजी के मसाइल हों, इन सब का हल किसमें है? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ سورت آل عمران کی آیت 31 ہے کہ بے شک کل کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، سوچئے آپ پر میں دعویٰ کرتے ہیں، الحمدللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر حقیقت میں تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فَتَّبِعُونِي، نبی کو اللہ سکھا رہے ہیں آپ کہیں کہ پھر ان سے کہہ دو کہ میری پیروی کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، لو ایٹ بوتھ سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں نا محبت دونوں طرف سے ہے۔ اردو کا ایک محاورہ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہماری اللہ کی محبت سے مشروط ہے، اور اللہ کی محبت نبی کی محبت سے مشروط ہے۔ اللہ نے کہہ دیا تم نبی کی پیروی کرو، میں تم سے محبت کروں گا۔ ذرا آپ اس جملے کی سنگینی پہ غور تو کیجئے، گویا کہ رسول کی پیروی کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا۔ شادیوں میں ہوتی، مرنے پہ نبی کی اتباع ہوتی ہے، اور دوسری چیزوں میں ہوتی ہے؟ بہت مشکل ہے، ہماری زندگیاں آج بالکل خدا رخی نہیں رہی، معاشرہ رخا، خاندان رخ، لوگ کیا کہیں گے، پھر دنیا میں بھی جینا ہے، پھر لوگ تو باتیں کریں گے، پھر میں کیسے کہوں گی، پھر میری بیٹی، میرا فلاں، میرا فلاں فلاں۔ تو اللہ نے آپ کو مجھے اس آیت میں خوبصورت سا اصول سکھا دیا، یا تو دعویٰ نہ کرو۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ اگر واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو پھر نبی کی پیروی کرو۔ آپ میں سے ہر بہن، ماشاءاللہ اس وقت آپ کتنے خاندانوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، سوچئے بڑی باتوں کا کیا فائدہ، میں آپ کو لمبی لمبی باتیں کروں، آیتیں دوں، حدیثیں دوں، بہت اچھی بات ہوگی، لیکن آپ اور میں عمل کے کس زاویے پہ کھڑے ہیں؟ نیت کریں ہر موقع پہ نبی کی سنت کی پیروی، نہ صرف یہ کہ میرا بلکہ میرے بچوں اور میرے گھر والوں کا عمل ہوگا، اسی سے خوشی ہے، اسی میں خیر ہے، ہماری زندگیوں کی خوشی اسی میں ہے۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر معاشرے اصلاح نہیں پا سکتے، فلاح نہیں ہو سکتی۔ آپ ایک بہترین، مکمل اور قابل عمل رہنمائی لے کر آئے تھے۔ اگر آپ ایڈریس میں ایک غلط فگر ڈال دیں، آج کل تو بہت آسان ہے، دیکھیں نا نیویگیٹر، صرف ایک لفظ غلط لکھے، آئے گی نہیں ڈائریکشن۔ زپ کوڈ، باہر کے ملکوں میں زپ کوڈ چلتا ہے، آخری چار فگر ہوتے ہیں، ایک لفظ فرق لکھ دیں، 7864 کی جگہ 234 لکھ دیں، آپ یہاں نہیں پہنچیں گے۔ تو اپنے لیے آج ایک نقطہ لکھیں کہ ہماری زندگی میں خوشیوں کا اور کامیابیوں کا نیویگیٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے اذان میں سے یہ جملہ سنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو ذرا سا اپنے دل میں محسوس کریں آپ۔ چلے میں آپ کو چھوٹی سی ایکٹیویٹی کراتی ہوں، دادا ابو، اس جملے کے ساتھ کوئی شخصیت ذہن میں آتی ہے؟ خاص طور پہ آپ میں سے وہ جن کے دادا ان کی زندگی میں حیات تھے اور انہوں نے آپ کے بڑے لاڈ دیکھے۔ لفظ دادا کے ساتھ محبت کا احساس ہوتا ہے؟ ابو، باپ، نانا، بھائی، ماں، بہن، ہر رشتے کے ساتھ دل میں کوئی ایک الگ سی کھینچ ہوتی ہے نا۔ آپ پوچھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کے ساتھ دل میں کوئی کھینچ پڑتی ہے؟ دیکھیے ایک ہے تقدس کا تعلق، رسپیکٹ کا تعلق۔ مثلا مثال ہے فلاں صاحب، مسجد کے امام صاحب، بہت رسپیکٹ ہے ان کی ماشاءاللہ، حافظ قرآن صاحب، کوئی استاد، کوئی دور یعنی مشہور شخصیات، ہم نے نہیں ان سے پڑھا، لیکن مثال دیتی ہوں کہ کوئی بھی عالم سوچ لیں، ورلڈ وائڈ لوگ، میرا تو ان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں، ہاں ان کا نام سن کے دل میں آتا ہے کہ اچھے شخص ہیں، لیکن ایک ہے آپ کا اپنا استاد، کھینچ پڑتی ہے استاد کے نام پہ، تعلق محسوس ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے؟ بس जब मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती हूँ तो क्या मेरे अंदर खिंच पड़ती है, ताल्लुक बनता है? और अभी असलमी की तरह रात भर बैठा रहता हूँ या मैं बैठी रहती हूँ कि अल्लाह के नबी, यहाँ तो आपसे मोहब्बत है, आपको आते हैं देख जाते हैं, दिल ठंडा हो जाता है। अल्लाह के नबी बीवी बच्चों में जाते हैं, थोड़ी देर गफलत आती है, फिर एकदम आपकी खिंच पड़ती है, याद आते हैं आप, हम आके आपको देखते हैं, सुकून मिलता है। जन्नत में चले गए तो क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह के नबी, अगर मैं जन्नत में चला भी गया, हमेशा मोमिन कसरे नफसी का काम करता है, अगर मैं चला भी गया तो मैं तो बहुत नीचे की किसी जन्नत में होऊंगा, और आप तो बड़ी आला जन्नतों में होंगे, मैं वहाँ आपको कैसे मिलूंगा? अगर आपने कभी किसी से मोहब्बत की है और आपको मोहब्बत हुई है ना, तो आप इस बात को समझेंगे। सहाबा का ताल्लुक नबी के साथ सिर्फ रिस्पेक्ट का नहीं था, एक मजहबी रहनुमा नहीं थे, रबीउल अव्वल आया और आपके नाम पे नाते पढ़ने का नहीं था, अच्छा आपकी खिदमत कर दो तो दुआएं कबूल होंगी, दुआएं ले लेंगे, ये नहीं था। वो खिंच वाला ताल्लुक था, रिलेशन, जिस तरह माँ बच्चे को देखती है या बहन भाई को देखती है या भाई बहन को देखता है। जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रिश्ता नहीं बनेगा, समझ लीजिए ईमान पूरा नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें नबी की सूरत में जो बेहतरीन रोल मॉडल दिया है, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने कहा कि तुम मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे नबी की इताअत करो, क्योंकि रसूल की इताअत के बगैर माशरे फलाह नहीं पाते। आप खातिमुन नबीयीन थे, ख़त्म कहते हैं अंगूठी को, खिताम यानी नबूवत की मोहर अब ख़त्म हो गई, आप इसके बाद किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो क्या आप और मैं हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? अभी मैं वो उसकी बात ही नहीं कर रही, बात मानना। अक्सर माएँ कहती है ना, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बेटियां हमारे साथ नहीं हैं, हम कहते हैं तो चिढ़ती हैं, गुस्सा करती हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि क्या आपने उनको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाया? आपने उनसे दोस्ती की है? जब माँ अपनी बच्ची से दोस्ती कर लेगी ना, तो दोस्तों की बात सबको अच्छी लगती है, फिर माँ की भी बात अच्छी लगेगी। जो माएँ अपने बच्चों से दोस्ती किए बगैर उनको गाइडलाइन देती है ना, बच्चे चिढ़ जाते हैं, बिल्कुल नहीं मानते वो बात। बिल्कुल इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दोस्ती का ताल्लुक, मोहब्बत का ताल्लुक। कब आखिरी बार मैंने अपने नबी के बारे में सोचा और मेरी आंखें नम हो गई, मैं रो पड़ी, मेरी हिचकियां निकल गईं, मैं सिसक गई। आप में से कितनी बहनें हैं जो उन्होंने कभी भी एक ही दफ़ा सही हज या उमरा किया, वो हाथ खड़ा करें। अल्लाह सारे हॉल पे बैठे लोगों को अपना घर दिखाए और शहरे मदीना दिखाए, और हम सबको बार बार दिखाए। कभी आप मदीना की गलियों में घुसने के बाद उस सुकून और बरकत को फील करें, बिलीव में। इस ट्रिप में मैंने इसको बहुत शिद्दत से महसूस किया कि मक्का अपनी जगह है, बट मदीना की गलियों में एक ठहराव है, एक खामोशी। वहां जाकर ऊंची बोलने को मेरा तो दिल नहीं करता, मस्जिद नबी में बैठकर कोई बात करना मुझे जुर्म लगता है, अजीब सी कैफियत होती है वहां जाकर, शायद सबके साथ ही होती होगी। और ये फीलिंग कि नबी का जसद मौजूद है, देखिए हमारा ईमान है कि अंबिया कराम की कब्रों में उनके जिस्म बिल्कुल एज इट इज हैं, जैसे अभी हमारा, मट्टी नहीं खाती अंबिया कराम के जिस्मों को। आप जरा सोचे, नबी सल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर अगर शीशा लगा होता तो हमें आपका चेहरा दिखता, हाथ दिखते? तब हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा का जो हुजरा है ना, तो उसकी दीवार गिर गई या कुछ उसमें मसला हुआ था, और ये बिल्कुल नबी सल्लम के विसाल से तकरीबन 40-50 साल बाद की बात थी। तो सऊदी हुकूमत ने फिर उसको मरम्मत की, और उतने में क्या हुआ कि जो कब्रें हैं वहाँ, एक कब्र से कुछ मट्टी हटी तो एक पाँव दिखा, और जो उस वक़्त मौजूद है ताबईन तबा ताबईन का दौर था, तो उस वक़्त एकदम ये कुलबुलाहट पड़ गई थी, बिल्कुल सही इंसानी पाँव दिख रहा था उनको कब्र में, तो लोगों ने कहा कि ये नबी सल्लम का पाँव होगा। फिर उस वक्त तक अभी कोई सहाबी जिंदा थे, नाम भी उनका लिया तो शायद उकबा भी नाम मिर्जा कोई, उनको बुलाया गया कि तुम शिनाख्त करो, तो उन्होंने बताया था ये नबी सल्लम का नहीं, उमर फारूक का पांव है। तो मदीना जाकर ये सोचना कि मुझे तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन मेरे नबी का वो चेहरा, जिस्म, सलामत इधर ही मौजूद है, फिर वो फीलिंग बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसे कभी आप कब्रिस्तान में से गुजरे और वहां आपका कोई अपना प्यारा हो, तो एकदम वो ढेरी को देख के दिल को कुछ होता है ना, कि हम इतनी जगहों पे और वो इतनी सी जगह में। ये खिंच बड़ी जरूरी है। आप इस वक्त सब बातों को छोड़ दें, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, आपने किसी को जवाब नहीं देना, मैं और मेरी जिंदगी कितनी मैच हो रही है। आप कलर मैच करते हैं ना, इससे मैच है कि नहीं, ये दुपट्टा मैच है कि नहीं। आप इस मैचिंग को देखें, क्या नबी सल्लम से मेरी जिंदगी मैच होती? मुसलमान जब तक नबी की पैरवी कर रहे थे तो उनका हाल क्या था? तेरा नक्शे पा था, नक्श नक्श प्रिंट, पा पाओं को कहते हैं, फुट जो रहनुमा, यानी जब तक हम आपके पाओं की मट्टी, आपके पाओं के नक्श थे, उनको गाइड बना रहे थे, वो हमारा नेविगेटर था। गुबारे राह थी कहकशां, रास्ते की मट्टी, गुबार जोड़ती है मट्टी, स्मोक वो कहकशां थी। यानी मुसलमान बहुत ऊंचा सोचते थे। ये तो पता नहीं हमें क्या हो गया, शायद नजर लगी हुई है, शायद किसी बुरे अमल की सजा है, या फिर लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाही उसवतुन हसना, पे अमल ना करने की सजा। हर जगह मुसलमान डाउन है। एक जंग शुरू होती है वो भी मुसलमान के खिलाफ, और अगली जंग जो शुरू होनी है ना दूसरी जगह, या खत्म होती है वो भी मुसलमान के खिलाफ। आप आज से लेके 24 है ना, बल्कि एंड है, 20th तक का तो याद ही होगा ना, 25 साल पीछे जाएं आप, सोचिए जरा, जहां भी कोई जंग हुई, मुझे अपना पीछे जाके सोचो ना, तो अफगानिस्तान और अमेरिका, उसकी जंग याद आती है। अफगानिस्तान मुसलमान मुल्क और अमेरिका नॉन मुस्लिम। थोड़ा सा आगे और पीछे इससे जो हमने सुना बड़े होते ही, कश्मीर का मसला, कश्मीरियों पे अगर जुल्म है तो मुसलमान, दूसरी तरफ गैर मुस्लिम, और उससे आगे जाइए ईरान इराक, ये दो मुसलमान थे, पीछे इसमें भी गैर मुस्लिम थे, सीरिया बॉस्निया पैलेस्टाइन, और इसी तरह से आज दुनिया का जो भी आप हिस्सा देखें, आपको इस चीज़ का यकीन आ जाएगा कि ये एक पार्टी मुसलमान और दूसरी नॉन मुस्लिम है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए, 1 महीना, दैट्स इट। सबसे लंबी जो जंग चली, या नबी के दौर में अमूमी जितनी जंगें हुई, तबूक ले लीजिए, 1 महीने तक मुसलमान बैठे रहे, गजवे अहजाब ले लीजिए, 1 महीने तक हिसार रखा, खत्म, हन्ने या बन्ने, बस, या इधर या उधर, खत्म। हमारी जंगें कई सालों से जारी हैं, आधी आधी निसफ निसफ सदी, या पौनी सदी होगी, अभी तक हमारी जंग नहीं खत्म हुई। इसमें दो में से एक बात है, या तो हम खुद भी हक पे नहीं है, या फिर हम इस काबिल नहीं है कि अल्लाह हमारी मदद करें, अदरवाइज बात कोई नहीं। अभी फ्यू वीक में भी, 2-3 डेज अगो, शाम फतह हो गया, इस्लाम का वो डोमिनेंट रूप उधर दिखा जो कभी किसी दौर में मदीना में दिखा, और ये कुर्बे क्यामत की निशानी है, मुल्क शाम ने फतह होना। क्यामत से पहले आपको पता है मक्का मदीना काबा ये सब इनवैलिड हो जाएंगे, खाना काबा गिरा दिया जाएगा, कुरान पाक के हर्फ मिट जाएंगे, जैसे आपकी ऑडियो फाइल को डिलीट हो जाए। हाँ, वो फास के सीनों से निकलेगी। आप सुनते थे ना, आज जब हाफिज़े कुरान को गे बने देखते हैं ना, और उनको सोशल मीडिया पे गंदगी करता देखते हैं, तो पूरा यकीन आ जाता है कि अल्लाह ने इन सीनों से कुरान को उठा दिया। क़यामत से पहले सबसे जो सेफ एरिया होगा ना, मुल्क शाम होगा, अम्बिया का मस्कन, इब्राहिम की सरजमीन, सारे नबी वहीं से उठे, फिर कोई इधर से उधर, उधर से इधर गया। आज उम्मत मुस्लिमा क्यों जूतियों की नोक में है? हम जितनी बेइज्जती करा रहे हैं ना, हम उतनी अकड़ते जा रहे हैं। वो एक डॉक्टर इसरार साहब जुमला बोला करते थे कभी, कि जूते भी पड़े तो भी चमारों के हाथों, वही लिक्स द बूट्स दैट किक्स अस, हम उन्हीं जूतों को चूमते हैं जो हमें ठुड्डे मारते हैं। दिन ब दिन हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है। जो ना खूब था वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा को? पिछले तकरीबन ये 25 साल, हम 20th सेंचुरी से शुरू करें, उससे पहले पाकिस्तान के कॉलेजेस ख़ास तौर पे और हाई स्कूल्स कह लें, उनका नक्शा बिल्कुल फ़र्क था। हम सब ने भी तो पढ़ा है ना, एक ईद पार्टी कह लें, या वो जो एनुअल पार्टी नहीं होती थी, फेयरवेल, मुझे बस वो याद है, हमारे कॉलेज में वो होती थी। हमें उसका भी बड़ा इंतज़ार था, ना उसमें डांस था ना गाने थे, बहुत भी हो तो कोई टेबलो था, हल्का फुल्का सा हंसी मजाक लड़कियों में था। हाँ, जो बात पता चली आज ही, मुझे भी फर्स्ट टाइम पता चली है कि फिर कंपटीशन का दौर शुरू हो गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया एजुकेशन में, अब कंपटीशन है, आपका नाम, उसका नाम, मेरा नाम। अब जहाँ कंपटीशन होगा तो हर एक मार्केट में कोई प्रोडक्ट लाएगा, कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं ताकि लोग हमारे कॉलेज में दाखिला लें। फिर वहाँ से ये तूफान ने बदतमीजी शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि बसंत मेले के नाम पे सबसे पहले लाहौर के शायद किसी कॉलेज ने एक नया फंक्शन कॉलेजों में इंट्रोड्यूस कराया, तो बड़ी धूम हुई। अब हर माशरे में याद रखिए, शर को फैलाने और पसंद करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं हक की नस्बत। तो लोगों ने अगले साल के दाखिले इस बेस पे लिए, इस कॉलेज में जाओ, इधर बड़ा फन है। फिर कल्चरल शोज हुए, और आज जो हो रहा है ये कभी नहीं हुआ था। कभी आपने सुना किसी मुहज्जब शरीफ कॉलेज का प्रिंसिपल अपने व्लॉग और ब्लॉग्स पे अपने ही कॉलेज की बेटियों की वीडियोस डांस करते हुए डाले? कभी सुना था आपने? आपने कभी सुना था कोई बाप बैठा हो और बेटियां डांस कर रही हो और वो खुश हो रहा हो? मुझे आंखों देखा, यानी बिल्कुल ये इस मुल्क की बात नहीं है, शादी से एक दो दिन पहले उसी हॉल में जाकर, अभी निकाह नहीं हुआ हुआ, लेकिन 2 दिन बाद दूल्हा दुल्हन बनेंगे, लड़का लड़की, उन्होंने स्टेज पे आके डांस की प्रैक्टिस की जो उन्होंने शादी वाले दिन मिलके करना था। उसी हॉल में बहनों ने, लड़के की बहनों ने जाकर अपनी दोस्तों के साथ जो लुड्डी डांस गाना बजाना है उसकी प्रैक्टिस की, ताकि जब हम परसों करें तो अच्छी करें। ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड बात बता रही हूँ। शादी हॉल क्या हो गए, गुनाहों की माजगा बन गए। और आज की शादी, और आज से 20-25 साल पीछे की इंडियन मूवी में से ज़्यादा बेहुदा आज की शादी हो गई है। दुल्हन का आपने कभी ड्रेस देखा? और फोटो सेशन कभी हुए थे? और कभी अपने लड़कों से मेकअप करते कराते लड़कियों को, बहू बेटियों को देखा था? किसी ने एक बड़ा अच्छा कमेंट दिया कि जब कोई औरत, कोई लड़की, बेटी, कोई भी है, बेपर्दा और कम कपड़ों में घर से निकलती है तो हैरत होती है कि उस घर में कोई मर्द है जो उसको निकलते देखता है और कुछ नहीं कहता। एक बाप अपनी बेटी को टाइट्स में देखे और उसके माथे पे बल ना पड़े? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी औरत को ऐसे ड्रेस में नहीं देख सकते थे। आपकी साली हजरत आयशा की बहन एक मौके पे आई तो उन्होंने कुछ पतला सा दुपट्टा लिया हुआ था, या उनके बाजू हाथ खुले थे, तो आपने कहा कि औरत के लिए जायज़ नहीं है कि जब वो बालिग हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक कोई उसका हिस्सा दिखे? तो ये हकीकत है, आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। कोई रंग नहीं मैच, कोई ढंग नहीं मैच,